प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर
जैसे परमात्मा ने लीला की थी कबीर परमेश्वर जी ने, वो एक एग्जाम्पल कोड करने आते हैं। स्वयं परमात्मा सतलोक से अपने मुक्ति धाम से चलकर आते हैं, या हम उनकी आत्माएं हैं हमारे लिए वो यहां कष्ट उठाते हैं और हमें एक उदाहरण पेश करते हैं कि तुम ऐसे रहो और विश्वास करो मेरे पर और फिर देखना तुम्हारे किस प्रकार दुख दूर होते हैं। तुम विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि आप जी को काल भगवान ने इतना विश्वासहीन कर दिया कि जो साधनाएं तुम करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं होता। तो इसलिए दृढ़ता नहीं आती, लेकिन आत्मा चाह भगवान की त्यागती नहीं। आप लगे भी रहते हो, लाभ कुछ होता भी नहीं, इसलिए आप में दृढ़ता नहीं आती। और विश्वास हुए बिना भगवान आपके कोई भी कार्य नहीं कर सकता, ना मोक्ष वाला ना संसारिक। तो विश्वास करने के लिए हमने परमात्मा के वचन पर रुकना होगा। अब क्या बताते हैं, जैसे परमात्मा कबीर जी सतलोक से चलकर आए, काशी शहर के बाहर बने एक जंगल में एक लहर तारा तालाब था। उस लहर तारा तालाब में पानी जो है गंगा का जल, जैसे गंगा जब वर्षा के दिनों में रेनी सीजन में फुल स्विम पर चलती है और उसका जल बाहर और फ्लो होकर किनारों से और एक सरोवर का रूप धारण कर लिया करता है, फिर सारा वर्ष उसमें पानी निर्मल रहता है। वो सरोवर लहर तारा नामक तालाब कहलाता था, अब भी है, वो विद्यमान है, दास देख कर आया वहां पर काशी में। तो उसमें कमल खिले हुए थे, उस कमल के फूल पर आकर परमात्मा सतलोक से आकर के एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए और उनके प्रत्यक्ष दृष्टा थे एक अष्टानंद नाम के संत ऋषि महर्षि जो स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। उन्होंने फिर अपने गुरुजी से पूछा था कि हे स्वामी जी, आकाश से एक प्रकाश का गोला आया, मेरी आंखें उसको सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद होगी, आंखें बंद हुई तो क्या देखा, उसमें जैसे कोई शिशु दिखाई दिया, बच्चा, जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, हमारी आंखें प्रकाश को सहन नहीं कर सकती, आंखें बंद हो जाती हैं। बंद होने के बाद फिर उस सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है, ऐसे फिर वो बच्चा दिखाई दिया। अष्टानंद ने स्वामी रामानंद जी के पास जाकर कहा कि प्रभु, आज मैं लहर तारा तालाब के ऊपर साधना कर रहा था, सुबह सुबह आकाश से एक प्रकाश का गोला आता नजर आया, उसकी तरफ देखा तो मेरी आंखें बंद हो गई, आंखें बंद हुई तो क्या देखा, आंखों में जैसे सूर्य का प्रकाश रहित जो आकार दिखाई देता, ऐसे एक बच्चा दिखाई दिया। हे प्रभु, फिर आंखें खोली तो वो प्रकाश एक कमल के फूल पर सिमट गया, एक मतलब उस तालाब में सिमट गया जैसे जल में गिर गया हो। रामानंद जी से पूछा, क्या यह मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरी कोई भ्रमणा है, भ्रम है मेरा। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा, आकाश से जब अवतार आते हैं तो ऐसी ही लीला हुआ करती है। अब वो किसी माँ से गर्भ लेगा, माँ के गर्भ में आएगा और वहां से जन्म लेगा, फिर यहाँ लीला करेगा, कोई महापुरुष आया है। अब ये तो सोच थी उन ज्ञानहीन ऋषियों की जो परमात्मा के विधान से परिचित नहीं कि ऊपर के अवतार जितने भी आए हैं, क्योंकि इनके अवतार तो मां से जन्म लेकर आए हैं, ये वो अवतार है जो कभी मां से जन्म नहीं लेता और वहां शिशु रूप धारण करके प्रगट हुए, धीरे धीरे बड़े हुए। उधर से वहां कमल के फूल से उनको नीरू नीमा नामक एक जुलाहा दंपति उठा ले गए और जुलाहे के घर पर प्रवेश की लीला होने से वो जुलाहा कहलाए। 5 वर्ष के होते ही बड़े बड़े ऋषियों के छक्के छुड़ा दिए ज्ञान में परमात्मा ने, लेकिन हम इतने अभिमानी और ज्ञानहीन है, भगवान को पहचान नहीं सके हैं, फिर भी जो हम अपना प्रसंग है वो पूरा करते हैं। अब क्या हुआ, परमात्मा जुलाहे का कार्य करते थे जो लीला में शरीर में बड़े हुए और अपना जितना भी पैसा इकट्ठा होता था बुनाई का जो आता था मेहनताना अपने परिवार के लिए रख लेते थे और शेष को भंडारा कर देते थे, अपने घर पे उसका संग्रह नहीं करते थे। अब यहां परिवार कौन कौन है परमात्मा के, एक तो नीरू नीमा जो उनसे जन्म नहीं लिया था लेकिन फिर भी एक व्यवहारिक तरीके से उनको माता पिता कहा करते थे परमात्मा। अपुण आत्माओं, जिस समय आपके हृदय में परमात्मा के ये गुण समाएंगे और आपको फिर याद आया करेगी कि हे परमात्मा, हम दुष्टों के लिए आप इतने दुखी हुए, इस काल की कैद से छुटवाने के लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए, काल की भांग का नशा उतारने के लिए परमात्मा ऐसी लीला करनी पड़ी हमारे लिए कि किसी प्रकार ये मुझे पहचान ले। अब इनका परिवार क्या था, नीरू नीमा ये दो इनके मुंह बोले माता पिता थे, इनसे जन्म नहीं था और एक पुत्र एक पुत्री थी। वो कैसे थी, एक सिकंदर लोधी नाम का दिल्ली का बादशाह था, सम्राट था और उसको एक ऐसा देह रोग हो गया, सब जंतर मंतर सभी ट्रीटमेंट करवा दिए क्योंकि राजा के पास सब सुविधाएं होती हैं और वैद पे वैद अड़ा दिए मंत्रियों ने, कोई राहत नहीं। मंत्री कहते हैं जी आपके रोग की हमारे पास अचूक औषधि है पर आपका असर नहीं कर रही। उसका जलन का रोग था, शरीर में ऐसी पीड़ा थी उस सिकंदर लोधी का जैसे किसी को अग्नि से हाथ जल जावे या कोई गर्म चाय वगैरह गिर जावे, उसको जो पीड़ा होती है ऐसी पीड़ा उसको गुप्त थी पूरे बॉडी में सिकंदर लोधी को। देखो जरा सा किसी का हाथ जल जावे तो देखना कितनी पीड़ा होती है, और उसके पूरे शरीर में ऐसी दाह हो रही थी। वैद्य कहते हैं महाराज अक्षमा करना, हम ऐसी औषधि रखते हैं लेकिन आपका असर नहीं हो रहा। पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं तू जाने मेरी ऐसे निभाएगी, हरदम लेखा बरना रहे, पल पल का हिसाब हो रहा भगवान के दरबार में। अब ये क्या अत्याचार करता था, जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाता था, कोई नहीं बनना चाहता था कत्ले आम करवा देता था। अब परमात्मा के मार्ग में जबरदस्ती नहीं चलती, ज्ञान दो, यदि मुसलमानों का ज्ञान हिंदुओं को पसंद है तो ग्रहण कर ले और यदि हिंदुओं का मुसलमानों को पसंद है तो वो ज्ञान से ही एक दूसरे के धर्म में आ सकते हैं बाय फोर्स नहीं। अब दूसरा कारण ये था मुसलमानों का, उनकी सोच थी, उनका उद्देश्य बुरा नहीं था। हमारे दोनों धर्मों के अज्ञानी गुरुओं ने हमें लड़ा मारा बेमतलब, बिना किसी उद्देश्य को गुमराह करके। अब मुसलमानों का उद्देश्य ये था कि हमारे हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा मिले हैं और परमात्मा ने उनको जो ज्ञान दिया उन्होंने हमें बताया कि अन्य देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। मुसलमान कहते हमारे हजरत मोहम्मद ने कहा है और खुदा का आदेश है, और अन्य उनकी पूजा करते हैं तो वो काफिर हैं। देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं फरिश्तों की, वो काफिर हैं और उनसे उनको कोई लाभ नहीं होना, उनका जीवन नष्ट हो जाएगा। इस उद्देश्य से वो हिंदुओं को मुसलमान बनाते थे और मुसलमान बनाने का उनके सुख शौक था। बताओ उनका कौन से वो मुसलमानों के वो जाकर के उनकी नौकरी करते थे, वो अपना केवल वे ऑफ वर्शिप बदलते थे। उनका उद्देश्य ये था कि ये जीवन नाश करें हिंदू समाज के, और हमारा मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, इसमें आने से इनका कल्याण हो जाएगा, इसलिए करते थे। फिर वो एक परंपरा पड़गी, फिर जबरदस्ती बनाने लगे। ये उनका जबरदस्ती वाला मार्ग था, यू गलत था, उनकी आत्मा रोती थी। अब हिंदू समाज मांस नहीं खाता, मुसलमान मांस खिलावे, कोई बात है यार? मुसलमान धर्म में मांस नहीं खाते थे, हजरत मोहम्मद जी ने कभी मांस नहीं खाया, और ना ही 180,000 हजरत मोहम्मद जी के अनुयायी मुसलमान बने थे, उनने टच किया मांस। मांस खाओ भगत कैसे हो सकता है? किसी जीव हिंसा करने वाला भगत कहने में भी शर्म आनी चाहिए उसको। अब कहते नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल का आया, 180 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया, अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। हजरत मोहम्मद जैसे वो पाक पुरुष थे, वो पवित्र आत्माएं थी, भगवान के कृपा पात्र थे, उन्होंने कभी ऐसे कर्द नहीं चलाई, हिंसा नहीं की, और तुम वो मांस खाते हो, तो वो हिंदुओं को पसंद नहीं, वे हम नहीं खाए इस गंध को। तो ऐसे विरोध और ऐसे ये चलता रहा। अपुण्य आत्माओं, मुसलमान धर्म अपने ही ग्रंथ को नहीं समझ सके। जैसे सूरत फुरकानी 25 की आयत नंबर 52 से 59 तक स्पष्ट किया हुआ है। ये मुसलमान धर्म के अनुयायी ये मानते हैं कि जिस अल्लाह ने हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, वो सुप्रीम पावर है और वो हमारा भगवान है, हमारा अल्लाह है। अब उनका अल्लाह, मुसलमानों का अल्लाह, अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि ए पैगंबर, तो इन काफिरों का कहा ना मानना। उसमें हिंदुओं को काफिर नहीं कहा, उसमें जो अन्य समाज था वहां का, और वो अन्य देवी देवताओं की पूजा करता था, हजरत मोहम्मद की बात पर विश्वास नहीं करता था कि इनकी पूजा छोड़ दो तुम। तो क्या कह रहा है वो, हजरत मोहम्मद का खुदा ये काल है, ज्योत निरंजन है, ये गुप्त रहकर आकाशवाणी करता या किसी के अंदर प्रवेश करके बोलता है। तो वो कह रहा है कि तू इन काफिरों का कहा ना मानना, ये तो इस बात पर विश्वास नहीं करते, तू इनकी बात मत मानना और मैं जो तुझे कह रहा हूं इस पर विश्वास करना। इस कबीर नामक एक परमात्मा है, सबसे बड़ा भगवान, ये कबीर को बड़ा कहने लगे, सुप्रीम पावर को, उसका नाम है कबीर। अब वो बड़ा कहो चाहे छोटा कहो, सुप्रीम पावर, सबसे सर्वशक्तिमान परमात्मा कबीर है, कबीर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह माने कबीर भगवान, हम कबीर साहब कहें, वेदों में कबीर देव लिखा है। और ये कबीर नामक अल्लाह वो है, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है कि ये कबीर अल्लाह है, ये सुप्रीम पावर है, ये सबसे बड़ा मालिक है, सब दुख नाशक है, पाप का नाश कर सकता है, मोक्षदायक है। और इस मेरे इन वचनों पर, कुरान शरीफ की दलीलों पर तो विश्वास करना, और इन अनकाफरों की बातों में मत आना, कहीं मेरे मार्ग को छोड़ ना देना। और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठे, और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। बताओ, अब कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उस परम शक्ति से, कबीर नामक अल्लाह से अपरिचित है, तो कुरान शरीफ का ज्ञान कंप्लीट कैसे हो गया? इन्होंने किस आधार से ये कहा कि हम सही पूजा कर रहे हैं, अब ये हिंदू गलत कर रहे हैं? इनका आधार गलत था। अब वो जब तक वो तत्वदर्शी बा खबर नहीं मिल लगा, तो वो ज्ञान भी व्यर्थ है जो काल ने आपको दिया, क्योंकि वो कहता उससे पूछो तो आपकी साधना व्यर्थ हुई। तो अब वो बा खबर ये दास है और परमात्मा का भेजा हुआ कुत्ता है, आप धनियों के लिए भौंक रहा है। अब भी कोई नहीं जागेगा तो उसका नाश हो जाएगा, भक्ति का उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। जैसे कुत्ता भौंकता है, उसको आभास हो जाता है कि कोई चोर उचक्का आसपास घूम रहा है, और समझदार व्यक्ति को चाहिए कि तुरंत जागे और देखे भी कुत्ता क्यों भौंका, अपने धन को संभाले, आसपास झांके, तो जिससे वह बला टल जाती है, वो चोर निकल जाता है कि यहां तो जाग गए हैं भाई। तो ये दास आपको जगा रहा है, परमात्मा ने भेजा है, और अब आप धनी हो, इस धन को संभालो। जो मनुष्य जी उनका धन आपको श्वास की पूंजी मिली है, इसको लेकर लाओ। ये बर्बाद हो रहा है, नष्ट हो रहा है, गलत साधनाओं से व्यर्थ हो रहा है। अब पुण्यात्मा प्रसंग जो चल रहा है वहीं पर आते हैं। जिस कारण से उस बाई फोर्स करने से, जबरदस्ती करने से उस सिकंदर लोधी को बहुत भयंकर रोग हो गया। कहते हैं जब जीव के ये पाप बढ़ जाते हैं, उसके औषधि भी काम करना बंद कर जाती हैं और रिएक्शन करती है। अपुणात्मा जैसे आपको इतिहास दिखाया था सच्चा सौदा सिरसा वाले के उस प्रवर्तक का, बलोचिस्तानी सामस्ताने का, खेमामल नाम था उनका, श्री खेमामल जी। वो पहले कितने पुण्यकर्मी प्राणी थे, साधना ठीक ना होने से अंत में सारी उसकी बैटरी डाउन होगी, वो खत्म हुई। जो कुछ भी कमाई थी, किसी को आशीर्वाद दिया, उसके इतिहास में लिख रखा है उन्होंने जीवनी में, एक को आशीर्वाद दिया उसका लड़का हो गया, एक को नू दिया धनी हो गया, फलाना हो गया, और गुफा के अंदर अपने आप रुपये बने पाए संधि के। तो वो पूंजी थी वह बर्बाद कर दी पूर्व जन्म की, आगे चार्जर ठीक था नहीं, साधना गलत थी, अंत में इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु होगी उस महात्मा की। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कि जब इंसान के पुण्य अक्षीण हो जाते हैं, पाप वृद्धि कर जाते हैं, औषधि भी रिएक्शन करने लग जाती है, काम नहीं करती। तो ये सती थी आगे किसकी, सिकंदर लोधी सम्राट की, किंग ऑफ इंडिया की। अब उस सभी जो वैद्य थे उन्हें हाथ खड़े कर दिए कि महाराज कुछ भी कहो, हमारे बस की बात नहीं। फिर जंतर मंतर के लिए मुसलमानों से खूब जैसे भी अनुष्ठान वो करवाए, साधु संत फकीरों से, फिर हिंदुओं को बुलाकर अब उसके आधार से करवाया, सब यूजलेस रहे, ऑल इन वेन। फिर किसी ने बताया कि काशी के अंदर एक महात्मा है और कबीर नाम है उसका, यदि वो रजा बख्श देंगे तो आप स्वस्थ हो सकते हो, क्योंकि ये आपके प्रारब्ध का कर्म है। ऋषि महर्षि संतों ने कह दिया कि महाराज राजन, ये आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये तो भोगने से आपका समाप्त होगा। अब सिकंदर लोधी अपने अंतिम सांस गिने, रो अपने कर्मा ने। अब क्या हुआ, किसी ने जब ये कहा तो उसको अविश्वास हुआ कि नहीं, बड़े बड़े महापुरुष, मैंने सब पूरी इंडिया की छान मारी, सबसे औषधियां ले ली, सबसे जंतर मंत्र करवा लिए, सब पर आशीर्वाद ले लिया, जो उन्होंने बताया सब अनुष्ठान कर लिए। उस व्यक्ति ने बताया कि वहां जाने से आपको पता चलेगा, वहां बहुत से उदाहरण बताए कि ऐसे ऐसे, एक ऐसे बीमारी थी उसको ऐसे रोग था, वो मर गया था, वो जीवित किया। अब सिकंदर लोधी के अंतर्गत काशी का नरेश वीरदेव सिंह बघेल, वो परमात्मा कबीर जी का शिष्य हो चुका था, उनकी शक्ति और भक्ति से परिचित होकर के। तो सिकंदर लोधी ने वहां एक भेज दिया अपने दूत के, जाओ राजा नरेश से कह दो, वीर सिंह से, कि मैं आ रहा हूं। अब राजा जो अपने छोटे राज्यों पर जाता था, उसके अंतर्गत होते थे, पराधीन होते थे, वो वैसे भी चेकिंग के लिए भी जाता रहता था। तो वीरदेव सिंह बघेल ने, काशी के नरेश ने पूरा रेस्टोरेंट, उसका जो रेस्ट हाउस था पूरा सजा दिया। जो ही सिकंदर लोधी हाथी पर विराजमान थे, साथ में हजारों की संख्या में सैनिक थे, सबके खाने का व्यवस्था कर दी और सिकंदर लोधी के सामने मेज के ऊपर फल फ्रूट सब कुछ लगा दिए। अब सिकंदर लोधी बैठा बैठा देख रहा, कुछ खा नहीं सकता। वीर सिंह ने करबद्ध होकर कहा, राजन अपने नाश्ता ग्रहण करो। तब कहा कि वीर सिंह, मैं तेरी जो अतिथि सेवा से प्रसन्न हूं, लेकिन मैं खा नहीं सकता। यूं कहकर आंखों में आंसू भर आए। तो वीरदेव सिंह बघेल ने पूछा, क्या कारण है राजन, कि ऐसे ऐसे मुझे बहुत भयंकर रोग है, सब जगह औषधि करवा ली, सब संतों महात्माओं से मिल लिया, मैंने सुना है यहां कोई कबीर नामक महात्मा है, आप जानते हो, सुना है कि वो बहुत अच्छे पहुंचे हुए हैं। अब ये कहते ही वीरदेव सिंह बघेल की आंखों में आंसू आ गए। वो किस लिए आ गए कि ये मुसलमान अहंकारी राजा है और परमात्मा जो चाहे सो कर देंगे, वो तो समर्थ शक्ति है, और अभिमान युक्त व्यक्ति पर परमात्मा कभी रजा नहीं बख्शेंगे और ये यहां से भी हताश होकर जाएगा। देख कैसा दुर्भाग्य इसका। फिर भी उसने बताया कि जी बड़े महापुरुष हैं और राजन आप सही ठिकाने आगे हो, और यदि वो रजा बख्श देंगे तो आपके ये रोग नहीं रहेगा। या मेरे सामने बहुत सैकड़ों प्रमाण है ऐसे ऐसे। अब सिकंदर लोदी के कुछ किरण दिखाई दिया, साकी कहा कि जल्दी बुलाओ उनको। सिकंदर लोदी ने वीरदेव सिंह से कहा कि उस महात्मा को शीघ्र बुलाकर लाओ। अब वीरदेव सिंह बघेल स्तब्ध हो गया, आज्ञा का पालन ना करूं तो राजा रुष है, ये रुष्ट होगा, ना जाने के सजा देगा मुझे, और यदि मैं परमात्मा को बुलाने जाऊं गुरु को तो मेरा नाश हो गया भक्ति का, मेरा दशा नालायक नहीं। अब उसने कहा भगवान दो पाटों के बीच आपका दास फंस गया, कुछ सद्बुद्धि दो मोको। तो प्रेरणा की परमात्मा ने, वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि राजन जो आज्ञा आपका श्रोधार्य है, जो हुक्म है आपका, लेकिन मैंने सत्संग में सुना है परमात्मा से कि साधु संतों को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, उनके पास स्वयं जाकर के नतमस्तक होकर के याचना करनी चाहिए, तब वो रजा बख्शते हैं, और यदि हम उनको बाई ऑर्डर यहां बुला भी लेंगे राजन और उन्होंने हृदय से आपको आशीर्वाद नहीं दिया तो यूजलेस है, उनका आना भी कोई फायदा नहीं करेगा। अब कहते मरता क्या नहीं करता। सिकंदर लोदी ने कहा कि ठीक है यहां मत बुलाना, मैं चलूंगा, जहां 800 किलोमीटर आ गया हूं और चल पड़ूंगा, जहां कहो चलो चलते हैं। शाम यानी आफ्टरनून होगी थी, शाम का समय था यानी तीन चार बजे सी। सिकंदर लोदी, वीरदेव सिंह बघेल, सिकंदर लोदी का एक धार्मिक गुरु था जिसका नाम था शेख तकी, और शेख तकी वहां के सब मुसलमानों का कंट्रोलर था, धार्मिक गुरु, क्योंकि हम धार्मिक नेता से सदा जुड़े रहे हैं, राजा हमारे लिए सेकंड रहा है, इसलिए राजा लोगों की एक राजनीति होती थी वो उसी को पकड़ लेते थे, उस धर्म नेता को अपने साथ रखते थे और उसकी खूब सेवा पानी और खूब चमचागिरी करते ताकि ये सब प्रजा को हमारे साथ रखेगा। वो भी साथ गया था। वहां से सिकंदर लोदी से कहा वीरदेव सिंह ने कि इस समय वो कबीर परमेश्वर जी अपने गुरु रामानंद जी ब्राह्मण पंडित रामानंद जी के आश्रम में आरती के लिए आते हैं, शाम को वहां चलते हैं, इसमें वहां मिलेंगे वो। तो सिकंदर लोदी ने कहा चलो चलते हैं। उधर से अपने पीर से कहा कि आओ पीर जी, शेख तकी जी। सिकंदर लोदी ने कहा क्या वो हमारे साथ, कहने लगा मैं नहीं जा करता इन काफिरों के आश्रमों में, वो तो हिंदू काफिर है, हम नहीं जाएंगे। अब वो तो रह गया वहीं पर रेस्ट हाउस में शेख तकी, सिकंदर लोदी, वीरदेव सिंह बघेल, वो दोनों चले गए, सैनिक बाहर खड़े कर दिए, तुम रहो यहीं पर। आश्रम के सामने गए तो वहां एक सेवादार खड़ा था, वीरदेव सिंह बघेल को मालूम था कि रामानंद जी भी अपने आश्रम में मुसलमानों को प्रवेश नहीं करने देते, क्योंकि कबीर परमेश्वर के मिलने के उपरांत उन्होंने इतना तो सुविधा दे दी थी कि पहले तो केवल ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को भी दीक्षा नहीं देते थे, उनसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे। कबीर परमेश्वर ने उनकी वह सारी फड़क निकाल दी, फिर वो हिंदुओं की कोई जाति से भेद नहीं करते थे लेकिन मुसलमानों से भेद फिर भी करते थे। वीरदेव सिंह बघेल को मालूम था कि स्वामी रामानंद जी सिकंदर लोधी को अंदर ले जाने से मुझसे अक्षुब्ध होंगे और फिर गुरुजी नाराज होंगे कि तूने मेरे गुरुजी को नाराज क्यों कर दिया। तो उसने एक तरीका अपनाया, उस पहरेदार से पूछ लिया कि भाई महाराज जी हैं अंदर, हां जी हैं, कौन, कि स्वामी रामानंद जी, कि हमने कबीर साहब जी से मिलना है। पहरेदार ने बताया कि वो आने ही वाले हैं और इस समय अवश्य यहां आते हैं, डेली आरती करते हैं गुरु जी के पास बैठकर। तो उन्होंने वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि आप जाइए और स्वामी रामानंद जी से आज्ञा लेकर आइए कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और कुछ समय कबीर साहब के आने तक इंतजार करना चाहते हैं, आपके आश्रम में प्रवेश चाहते हैं। अब अंदर वो सेवादार गया कि महाराज जी ऐसे ऐसे एक सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह आए हैं। रामानंद जी को पता था वो मुसलमान है, तो वहीं से गुस्से में कह रहे हैं ऊंची आवाज से कि इस आश्रम में इन काफरों के लिए जगह नहीं है, ये मांस मिट्टी खाते हैं, और कह दो बाहर इंतजार कर लेगा। अब वो सेवादार ने आकर बात कही, वो सुन ली, उनने भी बाहर सुने थी खूब न्यो कीनो, सिकंदर लोधी को भी, वीरदेव सिंह बघेल को भी, और यही बात आकर के पहरेदार ने कह दी सेवादार ने कि भाई कि नरेश राजा जी, हमारे गुरुजी ने मना कर दिया और कहा कि हम मुसलमानों को अपने आश्रम में प्रवेश नहीं करने देते, बाहर इंतजार कर ले। अब वो दिल्ली का सम्राट, वो क्रिमिनल कीड़ा फिर उठ गया उसके। अब उसने सोची एक दो कौड़ी का संत एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला और दिल्ली के सम्राट की इंसल्ट करता है, ये तो आम मुसलमानों के साथ क्या व्यवहार करता होगा, इसको अभी मजा चखाता हूं। निकाल ली खड़ग तलवार बार और चला गया अंदर। फिर उसने कौन रोके, वो तो एक मर्यादा है, प्रार्थना भी नहीं तो नहीं, संत के आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। वो अहंकारवश भूल गया सब कुछ, अंदर रामानंद जी बैठे थे अपने आसन पर और गुस्से में जाकर उसकी तलवार से गर्दन काट दी, दो हिस्से होकर अलग अलग गिर गया रामानंद। अब सिकंदर लोधी वापस चल पड़ा। पुणात्मा ये मन काल है, ये इस प्राणी से एक बार तो कुबद करवा दे है और फिर आत्मा रोती है कि मैंने के कर दिया। अब सिकंदर लोधी वीर देव सिंह बघेल अपने छोटे नरेश से कह रहा है कि देख मेरे खोटे कर्म, चाहता हूं कोई अच्छा कर्म हो रहा है बुरा, आया था अपना पाप अपने दुख निवारण के लिए और ये और इकट्ठा कर लिया, देख मैंने ये मेरे कर्म बिगड़ गए। अब आत्मा को सब पता होता है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। अब चल भाई वीर सिंह, मैंने तो दुख भोगना ही पड़ेगा क्योंकि अब कबीर साहब के गुरु जी की हत्या कर दी, अब वो मुझे आशीर्वाद दे ही नहीं सकते, बद्दुआ और देंगे, चल तू भाई खिसक यहां से चलते हैं। अब कहते हैं परमात्मा सौछल छिद्र में करूं अपने जन के काज। अब जो ही वो दोनों राजा और नरेश वो बाहर निकले, सम्राट सिकंदर लोधी और वीरदेव सिंह, सामने से परमात्मा आ रहे हैं कबीर जी। वीरदेव सिंह ने देखा कि ये आगे महाराज, वीरदेव सिंह उनके शिष्य थे, दंडवत प्रणाम की, मुकुट समेत जो का तू जमीन पर लेट कर। अब सिकंदर लोधी ने सोचा वो और कोई चारा नहीं, पहुंचा हुआ संत बताओ या कहीं बद्दुआ ना दे देते नहीं बसम कर दे, और तुरंत उसने भी दंडवत प्रणाम किया और उधर से वो अपराधी हो रहा था। अब जो ही दोनों ने दंडवत प्रणाम किया, परमात्मा ने उनके सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे नरेशो, इस गरीब के सामने आज कैसे पहुंचना हुआ, उठो आप तो सम्राट हो, मैं गरीब व्यक्ति हूं। ऐसा कहते हुए दोनों के सिर पे हाथ भी रख दिया। अब सिकंदर लोधी का जो रोग था वो नाश हो गया, खत्म, जैसे कभी था ही नहीं, छू मंत्र हो गया, तुरंत खड़ा नहीं हुआ सिकंदर लोधी, वीरदेव सिंह खड़ा हो गया और चरण पकड़कर रो रहा है बैठकर और कह रहा परवरदिगार मुझे क्षमा कर दो, अपराधी व्यक्ति हूं मैं, क्योंकि भगवान परमात्मा के सामने संत के सामने ये मन भाग जाता है, ये बड़ा नालायक है, आत्मा फिर आत्मा ही है, आत्मा रो रही है बैठकर, मुझे क्षमा कर दो महाराज, मुझे क्षमा कर दो, अपराधी हूं। परमात्मा ने कहा बेटा माफ कर दिया, कि नहीं हो सकता मैं माफ, क्षमा नहीं हो सकती मेरी, इतना अपराध है, मैंने ऐसी गलती की, रो रहा है और बता रहा है। परमात्मा ने कहा बोल बेटा, क्या दुख है तेरा, क्या गलती बन गई, सब माफ कर दूंगा, सब अक्षमा है मेरी ओर से कि मैंने ऐसे ऐसे जुल्म कर दिया, सब कहानी बता दी रोते रोते कि मैं दुखी था सब जगह जंतर मंत्र मैंने करा लिए, सब औषधि ले ली, कोई राहत नहीं मिली। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से ये दास स्वस्थ हो गया। हे भगवान, अब मैंने एक अपराध कर दिया, अब मुझे डर लग रहा कि आप मुझे बद्दुआ दोगे, मुझे श्राप दोगे, मैं फिर गल जाऊंगा, मुझे क्षमा कर दो। और मैंने ऐसे आपके आश्रम में आपके इंतजार के लिए प्रवेश चाहा था, लेकिन स्वामी जी ने मुझे अभद्र तरीके से डील किया, जिस कारण से मैंने उनकी हत्या कर दी, मुझे माफ कर दो। परमात्मा बोले, सिकंदर लोधी तेरा दोष नहीं है, मुझे मालूम था कि इनकी मृत्यु आपसे होनी है और वो हो गया। अब इसमें के झगड़े की बात रहेगी, आपके हाथ से इसकी मृत्यु लिखी हुई थी और चलो उठो, क्योंकि उन्होंने तो देखे थे ड्रामे सिकंदर लोधी ने कि थोड़ी सी बात पर कोई ये शेख तक ये बाउंडर करवा दे, हिंदू मुसलमान ने मरवा के कटवा दे, यदि से दालमु से पाला पड़ा था जिनको संत महात्मा मान रहा था, और वो संत जिसके गुरु जी का शिष्य काट दिया, फिर भी इन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये तो आपसे हाथों से ही होना था, इसका इसमें क्या चिंता का विषय है, आ जाओ, मत जाना राजन, अंतिम संस्कार करा के जाना, नहीं तो लोग आपको बहुत धिक्कारेंगे। अब राजा पीछे पीछे, कबीर साहब आगे आगे, दोनों नरेश अंदर गए। कबीर जी जब अंदर पहुंचे आश्रम में, पांच सात भगत थे, रो रहे हैं, और कबीर जी को देखते ही कि ऐसे ऐसे सिकंदर लोधी ने जुलम कर दिया, अपने गुरुदेव का शीश वगैरह कोई बात किया के काट दिया। अब इतने में सिकंदर लोधी पीछे पीछे आ गया, उसको देखकर वो चेले चपटे तो डर गए, अग्नि फिर आ गया भाई। तब परमात्मा ने कहा कि भाई बात सुनो, बात ने बढ़ाया नहीं करते, कौन किसने मारा है, ये इनका संस्कार था, इन्हीं के हाथों से इनकी मृत्यु थी, आप दिखा लो किसी ज्योतिषी से। स्वामी जी की आयु इविस्ता आज्ञा नहीं थी, ये एंड था इनका, और हो गया, आ गया, बात क्यों बढ़ाओ, कोई बात नहीं, और शांत रहो। अब वो बात अभी बाहर फैली नहीं थी, नहीं तो आग लग जाती वहां पर, कि मुसलमान ने हिंदू महात्मा काट दिया, दुनिया को गगन हो जाता, मुसलमान हिंदू का ऐसा बुरा नाश हो जाता। परमात्मा ने ऐसा छाला सा बैठा दिया वहां पर। अब मालिक ने सोचा ये लड़के मरेंगे हिंदू और मुसलमान, एक महात्मा के कारण लाखों मरेंगे आपस में कटकई वे। तब उस परमेश्वर ने दया आई, दंडवत प्रणाम की परमात्मा ने एक लीला करते हुए अपने गुरुदेव के, और कहा उठो महात्मा जी, आरती का समय हो गया है गुरुदेव, और देखो दिल्ली के बादशाह आए हैं आपके दर्शनार्थ, इनको आशीर्वाद दो, बहुत दूर से चलकर आए। अब यूं कहा ही था, वो दड़ अलग पड़ा था, शीश अलग पड़ा था, दोनों पर कपड़े डाल रखे थे, और उधर से ब्लड बह रहा था, उस जमीन में फैला हुआ था। अब वो शीश वहां से उठा और रामानंद की दड़ पर लगा, और रामानंद जी यूं बैठ गए। अब सामने फिर देखा सिकंदर लोधी के, उसके माथे पर फिर चोटी पड़ गई, क्योंकि स्वभाव जीव का। फिर इतने में कबीर साहब बोल पड़े कि महाराज प्रणाम हो। उन्हें देखा कि कुछ ये तो बात कुछ और है। तब अपना शव का जो निकला हुआ देखा, वो मटेरियल शरीर का ब्लड, तब उसमें क्या था कि रामानंद जी के शरीर से एक धारा रक्त की निकली हुई थी, जमीन पर फैली थी, एक धारा दूध की। तब रामानंद जी नीचे देखा तो वो भूल गया विषय को, और कहा कि हे परमात्मा, कबीर जी को परमात्मा कहते थे, भले ही परमेश्वर कबीर जी ने उनको आदेश दे दिया था कि आप मुझे एज ए तो ना पीपल ट्रीट करना, डिसिपल ट्रीट करना, मुझे शिष्य की तरह व्यवहार करना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, कलयुग आने वाले समय में लोग कहेंगे कबीर जी का कौन सा गुरु था, ये नकली गुरु, और फिर बर्बाद कर देंगे भक्तों को। तो इसी आधार से वो गुरु तो अवश्य बने हुए थे, लेकिन कबीर जी को परमात्मा शब्द से संबोधित किया करते थे। कहा कि परमात्मा, ये मेरे शरीर से आधा दूध आधा रक्त कैसे निकला, या तो ब्लड निकला या दूध दे निकले, जब मैं पवित्र हो गया हूं। तब परमात्मा कबीर जी ने कहा कि स्वामी जी, पहले आप एक ब्राह्मण वर्ग से प्यार करते थे, अन्य जातियों से नफरत किया करते थे। वो तो आपने दया बख्श दी अपने बच्चों पर, जब से इस दास जुल्हे को शरण में लिया है तो सभी जातियों को आप एक दृष्टि से देख रहे हो। अभी भी आप में कमजोरी है, आप मुसलमानों को दूसरा मानते हो, इनको नीच समझते हो। आपके मन में नफरत की आग अब भी जल रही है, जिस कारण से आप अभी 50-50 हुए हो। अब 50% अब भी आप मलिन हो, जिस कारण से अभी रक्त शेष रह रहा आपके अंदर। हम एक पिता की संतान हो, सतलोक से आए हो तुम सब मेरे बच्चे। 1.5-2 घंटा तक परमात्मा ने प्रवचन किया वहां पर। रामानंद खड़े हुए, 150 वर्ष के हो गए थे लगभग रामानंद जी, उसमें मतलब अच्छी आयु होगी थी, और खड़े हुए, खड़े होकर के और सिकंदर लोदी को सीने से लगा दिया कि बेटा माफ करना, आज मेरी बुद्धि साफ होगी। मैं दुष्ट आत्मा था, मैं सचमुच मुसलमानों से नफरत करता था, आज इस परमात्मा ने, ये अल्लाह आए हैं, ये खुदा है खुद, इसने आज मेरी वह कमजोरी भी निकाल दी, या दुष्टता भी आज एंड कर दिया। ये सारी लीला लगता है इन्हीं की थी। अब कहते हैं संत न होते जगत में तो जड़ मरता संसार। अगर वो परमात्मा वहां उस रामानंद की आयु ना बढ़ाते, वो तो मरना ही था, काल ने नाश कराना ही था, तो वहां हिंदू और मुसलमानों की आग लग जानी थी, कई हजार व्यक्ति मर जाते। उस आग को बुझाया, रामानंद जी की आयु बढ़ाई के भक्ति परमात्मा डट के तू। अब इस दृश्य को देखकर सिकंदर लोदी गदगद हो गया, अपना रोग नाश और अपने हाथ से काटे हुए को जीवित कर दिया। तो उसने कहा आप अल्लाह हो, आप खुदा हो, आप पूर्ण परमात्मा हो, अल्लाहू अकबर आप ही हो। बड़ा गदगद हो गया और उसको मत्था टेक के दंडवत प्रणाम किया। तब परमात्मा से सिकंदर लोदी ने कहा कि आप मेरे साथ एक बार दिल्ली चलो। अब परमेश्वर ने कहा भी दिल्ली में यूं नहीं चलूं तेरे साथ, पहले तू मेरा शिष्य बन, हम बगैर उपदेशी के घर नहीं जाते। तो सिकंदर लोदी ने कहा कि जी बोलो, जो कहोगे मैं आपका शिष्य हूं, आपने तो मुझे जीवन दान दिया है। परमात्मा ने कहा कि उपदेश ले, मंत्र जाप दूंगा, वो करना, और पूजा नहीं करेगा, मांस नहीं खाएगा। कि ठीक है महाराज, जैसे आपका हुक्म होगा, कोई भी शराब मांस बीड़ी तम्बाकू नहीं प्रयोग करेगा, कच्छा और उपासना नहीं करेगा, मैं जो मंत्र दूंगा वही करना होगा जी, ऐसा ही करूंगा। और आपके शासन में जीव हत्या बंद करवा दे, जैसे गाय कटती हैं, बकरे मुर्गे काटे जाते हैं, इनको बंद करवा दे। अब सिकंदर लोदी ने कहा प्रभु ये तो मेरे बस की बात नहीं, बाकी कोशिश करके देख लूंगा, बाकी जैसे आपका आज्ञा है कि मैं नहीं खाऊंगा। परमात्मा बोला चल भाई ठीक है, मेरी मर्यादा में रहना, मैं तेरे साथ दिल्ली चलूंगा। सिकंदर लोदी ने ये सोचा था, इतना निर्मल वचन बोलते हैं ये, वहां हिंदू और मुसलमानों के रोज झगड़े रहते हैं, और महात्मा को ले जाऊंगा, इनका सत्संग करवाऊंगा, और इनके वचनों से सब एक हो जाएंगे, आपसी दंगे मिटेंगे। ये सोचकर उन्होंने हमको दिल्ली आने का निमंत्रण किया, और मेरे साथ चलो भगवान। परमात्मा ने स्वीकार किया, क्या चलेंगे, क्यों वहां भी कई काटे ही काटने थे। अब सिकंदर लोधी वापस आ गए वीर देव सिंह के रेस्ट हाउस में, जहां पर राजा लोगों के लिए अलग से बनाया होता था एक स्थान। तो वहां जाकर के अपने पीर से कहा, शेख तकी से कहा था, इस खुशी में क्यों राजी होगा, बड़ा खुश हो गया कि अब तेरे राजा का दुख दूर हो गया। उसने जाके बताया कि पूर्ण संत आए हुए हैं, अल्लाह का रूप आए हैं, पूर्ण खुदा उतरे हुए हैं, और बताया कि मेरे जलन का रोग उनके आशीर्वाद से ठीक हो गया पीर जी, और मैंने ऐसे ऐसे उन्होंने अपशब्द बोल दिए थे मुसलमानों के बारे में रामानंद जी ने, मैंने उनकी गर्दन काट दी थी, और कबीर जी ने वो भी जीवित कर दी, ये तो अल्लाह आए हुए हैं। अब उस शेख तकी का तो आग लगी तन मन में, उसने सोचा कि अब ये सिकंदर लोधी कबीर जी को सिर पे रखेगा और तेरी यहां वैल्यू नहीं रहेगी। और दो फकीर और दो वजीर हमेशा ईर्ष्या में ही जला करते हैं। अब उसने सोचा कि तेरी वैल्यू कम होगी और राजा तो इब उसको सिर पे रखेगा। अब उसने सोची कि इसकी कोई ना कोई ऐसी विधि बनाऊं जिससे सिकंदर लोदी के हृदय में कबीर जी का स्थान ना रहे। कबीर जी से ईर्ष्या करते हुए उसको नीचा दिखाने के लिए, सिकंदर लोदी की नजरों में गिराने के लिए कुछ उपाय सोचने लगा। सुबह सुबह फिर कबीर परमात्मा जी वहां आ गए रेस्ट हाउस में उनके आमंत्रण पे। तो वहां शेख तकी की अब और कबीर जी की वार्ता करवा दी। किसने? बीरदेव सिंह बघेल ने। हिंदू भी बैठ गए, मुसलमान भी बैठ गए, 200-200, 300-300 मौजूद से, और कहा कि शेख तकी जी आप भी विद्वान हैं, परमात्मा कबीर जी भी ये भी बहुत अच्छे ज्ञान देते हैं, आप दोनों अपने प्रश्नोत्तरी करके कुछ डिस्कशन करो हमारे सामने। तब कबीर परमात्मा ने बहुत से प्रश्न किए, शेख तकी के पास कोई जवाब नहीं था। वो और हताश समझ गया अपने आप को, और हीन समझ गया, जिस कारण से उसने प्रतिशोध लेने के लिए कुछ योजना बनाई। कबीर साहब को लेकर के हाथी पर बैठाकर अपने ही अंबारी में, जिस पर राजा बैठा था, कबीर जी को भी उसमें बैठा दिया, आप भी उसी में, नहीं राजा के अतिरिक्त उसमें कोई नहीं बैठ सकता। इतना सत्कार दिया सिकंदर लोदी ने, क्योंकि सामने देखा उसका जीवन नरक था वो एकदम स्वर्ग बना दिया, और उनके सामने एक मुर्दा जीवित कर दिया, कत्लेआम कर दिया था वो जीवित कर दिया। सेना आ रही है साथ में, हजारों की संख्या में घुड़सवार है, राजा हाथी पर बैठा है। वापसी पर चल पड़े, रस्ते में एक दरिया का किनारा देख करके रात्रि काटने के लिए वहां खाना पीना नहाना धोना सुविधा देख करके उसके ऊपर वहां स्टे कर लिया रात का। उधर से शेख तकी का टेंट अलग लगवाता था, सिकंदर लोदी के मेरा धार्मिक गुरु है, यू नारी उसकी सेवा करवाता था, अपना टेंट अलग लगता था राजा का। उसी टेंट में कबीर जी को रखा अपने आले में, एक विशेष श्रद्धा से, क्योंकि देखो पुणात्मा ये आत्मा कृतगनी नहीं है, यो मन कृतगनी है। इतना सुख दे दिया उस आदमी को, सिर पर धरे नहीं तो और के धरे फिर इंसान, उसके अपने साथ रखे। तो सुबह सुबह प्रणाम करने गया सिकंदर लोदी किसको, शेख तकी अपने धार्मिक गुरु को। शेख तकी ने मुंह फेर लिया, मरोड़ी खा गया, अब जान गया कि जो वैसे नखरे करता कुछ ना कुछ इसके इसने बुराई सूझ रही है, ये कोई न कोई पंगा पावेगा तेरे जी ने। उसने पूछा महाराज क्या बात होगी, मुझसे कोई गलती बन गई? सिकंदर लोदी ने कहा शेख तकी से, वो कहता है कि मेरी क्या आवश्यकता है तुझे? शेख तकी बोला तुझे तो मिल गया ना गुरु, बना ले उसी को, तू उसको अल्लाह कहता है, तू उसको खुदा कहता है, ठीक है, मैं जाता हूँ मुसलमानों को बताऊंगा कि ये अल्लाह बताता है। हजरत मोहम्मद तो कहते हैं अल्लाह निराकार है, वो कभी मनुष्य शरीर में आता ही नहीं, उसको खुदा कहता है। अब चल देखते हैं वहां क्या होता है। अब सिकंदर लोदी समझ गया यू नाश कराओगा, जाते आग लगाओगा, सब मुसलमान मेरे विरोधी हो जाएंगे, मेरा राज जाओगा। वापस आ गया बहुत एकदम मायूस सा होकर के, कहां तो खुशी थी चेहरा खिला हुआ था, फिर एकदम टेंशन में। अब कबीर परमेश्वर ने पूछा, वो तो अंतर्यामी थे, सारी जाने थे के ड्रामा होगा इसके जी ने। परमात्मा कबीर जी ने पूछा राजन कोई राजकाज की कोई बुरी खबर सुन ली क्या, कुछ आपका चेहरा उतरा हुआ है? अब वो कहने लगे सिकंदर लोदी का भगवान आपके रहते इस दास का क्या बिगड़ सकता है, लेकिन ये मन कुछ ऐसा ही सोच लेता है, ये मेरा धार्मिक पीर है ना, यो मेरे सिर का दर्द है। फिर वो शेख सकी ने क्या कहा कि यदि तू इसको अल्लाह मानता है तो हमारे हजरत मोहम्मद जी ने मरी हुई गौ को जीवित कर दिया था और एक बकरे को जीवित कर दिया था ऐसे सिद्धि से मारकर, अगर तू मानता ये अल्लाह है कबीर तो मेरे सामने जीवित करवा के देखा किसी मुर्दे को, तब मैं तेरी गवाही दूंगा कि सचमुच ये अल्लाह आया हुआ है, क्योंकि मैं तेरे साथ वहां नहीं गया था रामानंद के आश्रम में, मुझे क्या पता वो जीवित हुआ है कि नहीं हुआ है। ये कंडीशन रखती थी। तो सिकंदर लोदी बताने लगे कबीर परमेश्वर जी से कि भगवान ये मेरे सिर का दर्द है, ये पीर है, और अब इसने ऐसे ऐसे कंडीशन रख दिया कि मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित करे कबीर साहब तो मैं मानू, और नहीं तो जाकर मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा काफिर हो गया, हिंदू को गुरु बना लिया, और भगवान ये जाते करेगा इस काम को और सभी मेरे विरोधी हो जाएंगे और मेरा राज खत्म होगा। पुण्यात्माओं, ये वो समर्थ परमात्मा है, जब आप इसकी शरण में आओगे जब पता लगेगा। ये टेंशन निर्णय देता अपने भगत की बहुत जल्दी दूर करता है। तभी परमेश्वर ने कहा कि आप चिंता मत करो और कहो शेख तकी को कोई मुर्दा खोज लावे। अब सिकंदर लोदी जी को तो पता था कि तो परमात्मा ही कर देंगे काम, गया जल्दी से कि हे शेख तकी, वो कह रहे हैं कबीर जी कि आप कोई मुर्दा लाओ खोजकर आपके सामने अभी करते हैं। तो शेख तकी कहता मैं कहां से लाऊं मुर्दा, कभी होगा जब देखेंगे, अभी थोड़ा ही है। अब सिकंदर लोदी फिर टेंशन में, अगर न्यू का न्यू यू वहां पहुंच गया तो जाते आग लगा देगा। इतने में क्या हुआ, सभी कोई ना